अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान से मुलका कबायली शिमाली जिले वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ की जाने वाली फौजी कार्रवाई के 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर अमन व अमान और नकल मकानी करने वालों की वापसी के हवाले से अभी तक कबायली मुतमईन दिखाई नहीं देते। इस फौजी कार्रवाई के नतीजे में इस इलाके में लगभग एक दहाई तक हुकूमत और आम लोगों के लिए दर्द सर बनने वाले अस्करियत पसंदों के ठिकाने और मराकज तो खत्म हो गए हैं, मगर अभी तक तशद्दुद, दहशतगर्दी और घात लगाकर कत्ल करने की वारदात तबातुर से होती रहती हैं। इसी तरह फौजी कार्रवाई शुरू होने से कबल नकल मकानी करने वालों में से 25,000 से ज्यादा खानदान बन्नू और मुल्क के दीगर इलाकों के अलावा अफगानिस्तान में भी कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान में लड़ाइयों में मसरूफ दोनों फरीक तालिबान और हुकूमत अमन मुजाकरात शुरू करने पर आमादा हो गए हैं, ताकि दो अशरों से जारी इस खून खराबे का कोई सियासी तस्वीर ढूंढा जा सके। इन मुजाकरात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। इम्कान यह है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुजाकरात इस माह के आखिर में कतर में होंगे। इतवार के रोज तालिबान के एक तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत के दौरान इस नई पेशरफ्त के बारे में तस्दीक की, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि मुजाकरात कब शुरू होंगे। अफगान हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले एक जरिए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सदर अशरफ गनी ने दोहा में बैन अफगान मुजाकरात की कतर की जानिब से मेजबानी की तजवीज़ कबूल कर ली है, जहां तालिबान का सियासी दफ्तर कायम है। सदर अशरफ गनी के एक तर्जमान सिद्दीक सिद्दीकी ने इतवार को अपनी एक ट्वीट में कहा कि अफगान हुकूमत सिर्फ पहली मुलाकात दोहा में मुनक़द कराए जाने पर रजामंद हुई है, ताहम अभी तक बराए रास्त मुजाकरात के लिए किसी मकाम के तायुन पर कोई मुआहदा नहीं हुआ है। कतर तालिबान और अमरीका के दरमियान मुजाकरात की भी मेजबानी कर चुका है, जिसके नतीजे में 29 फरवरी को दोनों के दरमियान एक तारीखी मुआहदा तय होने की राह हमवार हुई। इन मुजाकरात का मकसद 19 साल से जारी जंग का खात्मा था। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा परवेज खटक ने पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं को मुजाकरात की दावत दी है और कहा है कि वो आएं और तमाम मुतनाज़िया मसाइल पर तबादला ख्याल करें। इस पेशकश के जवाब में पीटीएम के रुकन कौमी असम्बली अली वजीर कहते हैं कि हमें मुजाकरात और बातचीत से कोई इनकार नहीं, सिर्फ अखलास और इख्तियार रखने वाले लोग जब चाहें हम मुजाकरात के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में वजीर दिफा परवेज खटक के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि परवेज खटक ने पीटीएम रहनुमाओं को दावत दी कि वो आएं और तमाम मुतनाज़िया मसाइल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करें। बयान के मुताबिक परवेज खटक का कहना था कि वो और पीटीएम रहनुमा सूबे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं और हमें इज्तिमाई तौर पर सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पख्तून कौम एक मुहिब वतन कौम है और अपने मुल्क के दिफा में अपना खून बहाने से भी दरेग नहीं करेगी। अमरीका के शहर मिनेसोटा में 3 हफ्ते कबल पुलिस की हिरासत में एक सियाफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद पुलिस की ज्यादतियों और नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे आज भी जारी हैं। उधर एटलांटा में एक और सियाफाम शख्स रिशार्ड ब्रुक्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। आज पीर के रोज जॉर्जिया रियासत के दारुलहुकूमत में एक एहतजाजी मार्च का अहतमाम किया गया है। इसके अलावा वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने वाक़ लाफान पार्क भी एहतजाजी मुजाहरा कर रहा है, जहां 2 हफ्ते कबल सदर ट्रंप के करीबी वाक़ चर्च जाने के लिए रास्ते को ज़बरदस्ती खाली कराया गया था। इससे कबल कल इतवार के रोज़ वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, एटलांटा और मियामी में मुजाहरे हुए हैं। सिएटल में मुजाहरीन ने शहर में 4 ब्लॉक्स पर मुहित इलाके पर पुरअमन तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिसे वो खुद मुख्तार जोन करार दे रहे हैं। इस इलाके की बड़ी सड़क पर जली हरूफ में ब्लैक लाइव्स मैटर का म्यूरल आवेजा है। खबरें खत्म हुई।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
یہ وائس آف امریکہ ہے. پروگرام جہارنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. کورونا کی عالمی وبا کے دنوں میں ہمارا یہ خصوصی پروگرام. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ. وفاقی حکومت نے جولائی کے آخر تک کیسز کی تعداد 12 لاکھ تک پہنچنے کا انتباہ جاری کر دیا. بین الاقوامی تحقیقی اداروں کو بھی پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ پر تشویش. لاک ڈاؤن کے نفاذ نہ ہونے کی صورت میں 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ اموات کا خطرہ. ادھر ملک میں پلازما کی خرید و فروخت کی اطلاعات. ملکی قوانین اور میڈیکل کے ضابطۂ اخلاق اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کورونا اور پاکستان کے اندر سماجی اور انتظامی رویوں کے اوپر. پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ امریکی معیشت بحالی کی طرف محو سفر. وائٹ ہاؤس کا دعویٰ 2021 مستحکم سال ہوگا. مشیر اقتصادیات ان کے اس بیان کا تجزیہ کریں گے. پروگرام کا آخری حصہ اٹلانٹا میں ایک اور سیاہ فام پولیس آفیسر کی گولی لگنے سے ہلاک. مظاہرے. ملک میں پولیس کا موقف کیا ہے؟ اصلاحات کے مطالبے سے ہونے والے مظاہروں کا کیا ہوا؟ یہ موضوع بھی ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے. میں ہوں اسد حسن اور کورونا کے پھیلاؤ اور اس ریفرنس میں ہم بات کریں گے. پاکستان میں جیسے کہ ہم نے بتایا ہے مسلسل تیسرے روز بھی 6,000 سے زیادہ نئے ٹیسٹ سامنے آئے ہیں. مجموعی تعداد 1,40,000 ہو گئی ہے جب اتوار کی رات ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن یہ تعداد بدستور بڑھ رہی ہے. اسد عمر فیڈرل منسٹر اور کورونا کے اوپر وہ لیڈ کر رہے ہیں اس ٹیم کو، وہ بذات خود یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے مہینے یہ تعداد 12 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، یعنی صرف 30 دنوں کے اندر اندر اس میں 10 گنا اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی آلموسٹ 1000% اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. دوسری جانب ایک رپورٹ جو انٹرنیشنلی ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں امپیریل کالج لنڈن وہ اپنے اس کے اوپر ریسرچ اور فگرز کو کی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں 10 اگست تک جو ہے وائرس، کرونا وائرس وہ پیک پہ ہوگا، اور اس میں جو اموات ہیں وہ 80,000 جو ہے وہ اس کے اوپر آ سکتی ہیں، اسے تجاوز کر سکتی ہیں. اور ایک رپورٹ ان کی یہ بھی کہتی ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستان میں 2.2 یعنی 22 لاکھ افراد، 2.2 ملین مطلب 22 لاکھ افراد مر سکتے ہیں اگر لاک ڈاؤن اس کو زبردستی نافذ نہیں کیا جاتا ہے. یہ انٹرنیشنل ریڈنگز آ رہی ہیں. اور ایک خبر پاکستان سے یہ بھی آ رہی ہے کہ ایسے میں جب ایک مشکل وقت ہے اور ڈاکٹرز کے اوپر آلریڈی ایک مشکل وقت اس سینس میں ہے کہ ایک تو وہ فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہے ہیں کرونا کے خلاف، لیکن اسی جانب ایسے پرائیویٹ بزنسز بھی ہیں جہاں پہ پلازما کی خرید و فروخت کا کام ہو رہا ہے. پاکستان کے آفیشلز بھی، انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور پاکستان میں اس مرض، اس وائرس کے اوپر تحقیق میں مصروف سینئر سائنٹسٹ، انہوں نے بھی ایک بڑے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی میڈیکل میں اور ایتھیکل پریکٹسز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر خالد عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز پریکٹیشنر ہیں واشنگٹن ڈی سی ایریا کے اندر. ان سے ہم معلوم کریں گے ان دونوں حوالوں سے کہ کتنی گنجائش ہوتی ہے اس طرح کی چیز کی خرید و فروخت کی. اور زاہد گشکوری صاحب انویسٹیگیٹو سینئر جرنلسٹ جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کرونا پھیلاؤ پہ، تو زاہد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا فیئرز بتائے جا رہے ہیں پاکستان سے. ہم نے ایک حوالہ تو اسد عمر صاحب کا دیا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے ریفرنس میں جو بتایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن امپوز نہیں ہوتا تو 22 لاکھ لوگ مر سکتے ہیں. سو کچھ کنسیڈر کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ ہو؟
بالکل اسد، جس طرح آپ نے بتایا ایسے ہی پیر ہیں یہاں گورنمنٹ کے لوگوں کے اندر بھی، اور کل ایک امپورٹنٹ میٹنگ ایک اور متوقع ہے جس میں کوئی بڑا ڈیسیجن آ سکتا ہے. کل کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی 12 ہو گئے ہیں تو آج ہی آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ میٹنگ. اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جس سے آپ نے بتایا کہ یہ نمبرز کافی آگے جا رہے ہیں. اگر آپ گزشتہ 7 دن کا نمبر دیکھیں پاکستان کے جو ٹیسٹ کے ریزلٹ آئے ہیں، تو 237 افراد के पॉजिटिव डेली हर डे पाकिस्तान में, इनके आज का जो नंबर था वो 7,000 को टच कर गया
है। और टोटल अंदाजा है कि टोटल कितनी डेली टेस्टिंग कितनी हो रही है, क्योंकि 7,000 से ज्यादा वरियंग है कि शायद ये 15-20,000 टेस्टिंग के ऊपर ये नंबर आ रहा है। अगर ये टेस्टिंग 50,000 या 1,00,000 हो जाए जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, तो फिर तो ये तादाद और ज़्यादा हो सकती है।
बिल्कुल ऐसा है, टेस्टिंग पाकिस्तान में कम है और इसको बढ़ाया जा रहा है हर आए दिन के साथ। यही एक वजह है कि गुज़श्ता एक हफ्ते का जो रेशियो है इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है कि नंबर और पाकिस्तान में 10,000 जिनके 10,000 के करीब मरीज हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो कोरोना के मरीज हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, हर घंटे 4 अमवात हो रही हैं गुज़श्ता 8 दिन का, अगर आप तो परसेंटेज निकालें कोरोना के 4 मरीज हलाक हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये नंबर तकरीबन अब लगभग 2700 के करीब है। 1,42,000 के कंफर्म पेशेंट हैं। और एक बात ये भी है कि 40,000 से ज्यादा जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं, जो हम प्लाज्मा की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है।
मैं आता हूँ प्लाज्मा की तरफ, आता हूँ जायद, इसको तो हमने सेपरेटली डिस्कस करना है कि ये क्या हो रहा है। अपडेट, थैंक यू सो मच, आपने नंबर हमें अपडेट किया है। खालिद अब्दुल्ला साहब, आप बाहर बैठ के क्या फील कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है, कितनी कहना चाहिए कि सेंसिटाइज्ड है सोसाइटी भी और या हुकूमत भी या नहीं है इस रेफरेंस में अब तक?
चीज जो असद उमर साहब ने जो फिगर्स दी है वो भी बड़ा हम्बल फिगर है। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की स्टडी आई थी और उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि इंडिया में, इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन लोग हैं इस वक्त, तो एशिया की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने, जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने कहा था कि 300 मिलियन के करीब इंडियंस को ये लाहक होगा मर्स। ठीक है, उसमें से बहुत से ठीक हो जाएंगे, लेकिन 30 मिलियन उनमें से हॉस्पिटलाइज होंगे और 3 मिलियन के करीब की डेथ हो सकती है। ठीक है, उसको अगर आप 10 पे तकसीम कर दें तो वो पाकिस्तान के फिगर्स बन जाते हैं, वो असद उमर साहब के फिगर से भी कुछ थोड़े से ज्यादा है, ये अंदाजा लगा लीजिएगा आप। और उसकी में एक चीज जो समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा मेडिकली, वो ये कि लंग्स में जो चीज चली जाए, देखें हमारे गले में, साइनसेस में, नाक में बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन सुना होगा, स्ट्रेप थ्रोट हो गया मुझे, स्ट्रेप थ्रोट अगर गले तक महदूद रहे तो इंसान बच जाता है, अगर वो निमोनिया की सूरत में लंग्स के अंदर चला जाए तो मौत वाके हो जाती है। आजकल भी अमेरिका में 17,000 लोग बूढ़े जो है वो इस फ्लू वायरस, जो ये आम फ्लू जिसको हम आजकल इन्फ्लुएंजा ए कहते हैं, उसकी वजह से 17,000 लोग मरते हैं। तो ये वायरस जो है ये अटैक ही फेफड़ों पे करता है। तो असद उमर साहब की भी जो फिगर्स हैं वो भी हम्बल फिगर्स हैं, और ऐसा हो सकता है, और मैंने आपको ये स्टडी बताई
सही ये है। अब आ जाते हैं जाहिर साहब दूसरी जानिब, प्रैक्टिसेस कितनी इस बुरे वक्त में, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है डॉक्टर्स पे भी, एक तरफ तो बेचारे फ्रंट लाइन के ऊपर फेस कर रहे हैं लेकिन क्रिटिसिज्म भी है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्रैक्टिसेस के ऊपर सवालिया निशान आ रहे हैं कि बाज़ लोग कह रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, डेड बॉडीज़ तक नहीं दी जा रही हैं, बाज़ लोग अब ये कह रहे हैं कि इवन ब्लड या इवन प्लाज्मा उसकी खरीदो फरोख्त का कारोबार वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास?
जी असद, बिल्कुल इस पे बड़ी डिबेट हो रही है पाकिस्तान में कि जो पेशेंट जो कोरोना के थे वो रिकवर्ड हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा चाहिए पाकिस्तान में। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेजेस पे, इंटरनेट पे, और खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक हेल्पलाइन बना दी है। अभी मैं एक पेज देख रहा था, उसमें 500 यानी कि 5,00,000 लोग उसका उस पेज को फॉलो कर रहे हैं और उसमें लोग डोनेट भी कर रहे हैं। तो ये एक बहस ही है कि कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, आया कि इसकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक डिबेट जारी है, डॉक्टर्स भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में भी ये कहा रहा है तो वो अरेंज कर देते हैं आपको प्लाज्मा लाखों रुपए में और दसियों लाख इसकी कीमत है। तो ये एक डिबेट है यहाँ पाकिस्तान में जो बड़ी तेजी से चल रही है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इस डिबेट में, डॉक्टर्स
भी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इसमें कोई एथिकल प्रैक्टिस है या उसके अंदर कोई गुंजाइश है उसके एथिक्स में?
देखिए उसमें दोनों राय सामने आ रही हैं। जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम को मैं सुन रहा था एक टेलीविजन प्रोग्राम में, वो बता रहे थे कि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है जो ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी ट्रांसप्लांट को देखती है। आप अगर लीगल तरीके से ये चीज लेते हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है। वो लोग चार्ज करते हैं ब्लड भी, किडनीज वगैरह भी, ये सारी चीजें पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद थी। लेकिन अब क्योंकि पेंडेमिक है, एक ह्यूमैनिटी पे बहुत टेस्टिंग टाइम है, लोग समझते हैं कि ये बेचने की बजाय अगर वो डोनेट कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये बड़ी मदद होगी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े बड़े हैं या कुछ डॉक्टर्स, उनका मुबैना तौर पर एक किरदार सामने नजर आ रहा है कि वो जो अमीर लोग हैं, क्योंकि कोरोना गरीब और अमीर को देखता नहीं है, तो वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक असल बात आपने दो हफ्ते में पाकिस्तान में देखी होगी कि काफी बड़े बड़े लोगों को इस वक्त पाकिस्तान में बड़े काफी पॉलिटिकल लीडरशिप है या काफी अमीर तरीन लोग हैं वो क्वारंटीन हैं इस वक्त। जिस तरह आप शायद अफरीदी को देख लें या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं,
शाहिद खाकान अब्बासी
हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, तो ये इस वक्त शेख रशीद हॉस्पिटलाइज हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान उठा है, गॉड फॉरबिड अगर अल्लाह ताला ऐसा
सवालिया निशान इस सेंस में जाहिद के कि अगर ये लोग जिनका हाई जो बेहतर हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनकी फूड और इनटेक भी बेहतर है और जो अवेयरनेस रखते हैं और मैक्सिमम एहतियात भी करते होंगे, अगर वो इससे मुतासर हैं तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? क्या इस रेफरेंस में ये फियर्स हैं कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअली?
देखें आप ये कह सकते हैं और अल्लाह ना करे ऐसा किसी की डेथ हो जाती है तो मूड पैनिक होगा। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद की सिचुएशन बहुत खराब है यहाँ पर। और हर दफ्तर में जिस तरह से रिपोर्टर हम जाते हैं, बहुत सारे केसेस, जानने वाले दोस्तों के फेसबुक वाल ट्विटर भरी हुई है, किसी की डेथ हो रही है, किसी को कोरोना पॉजिटिव आया है, ऑफिसेस बंद हैं काफी, वहां पर सूरत हाल बहुत खराब है।
इसमें तो इस कोई शक नहीं, आज मैंने भी बल्कि ये फेसबुक पे डाला है जी,
एक घंटे में 240 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और जी तादाद डबल हो जाएगी ऐसे रहता है।
डबल क्या, ये तो जैसे मैंने बताया 10 गुना बढ़ रही है अगले महीने तक। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब, आप जरा एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर आ जाएं। देखिए ये सवाल जेन्युइन है, जाहिर एक चीज फैल रही है, कुछ लोग जिन्होंने रिकवर किया है जिसको आप हर्ड इम्यूनिटी के तौर पे लेते हैं कि अब उनका प्लाज्मा काम आ जाएगा, वो ये प्लाज्मे की खरीदो फरोख्त है, इसकी कोई गुंजाइश है मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर?
जी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आज की बहस नहीं है, ये बहस बड़े अरसे से चल रही है जब से हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम शुरू किया है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में खून बेचने की एक बीमारी चली थी, हालांकि खून जो दिया जाता है इंसान, सो कहने का मतलब ये है कि एक इंसानी तो असूल के तौर पे एक मेडिकली एथिकली और दूसरी चीज हमारे इस्लाम में इंसानी ऑर्गन्स को बेचना एक हराम करार दिया गया है। हजरत मौलाना मौदूदी की पूरी किताब का एक चैप्टर उन्होंने
इस्लामिक पर्सपेक्टिव, लेकिन एक इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर क्या इसकी गुंजाइश है?
बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह क्या है कि फिर इसका मतलब क्या है कि जिनके पास पैसे हैं उनको जिंदगी उनकी जिंदगी बचाई जा सकेगी और जो गरीब है उनको मरने दिया जाएगा, ये किसी भी इंसानी लिहाज से किसी तरह से भी ठीक
नहीं। मैं बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर दूं कि अगर एक गरीब शख्स है जो बहरहाल अपने बेहतर इम्यून सिस्टम की वजह से रिकवर कर गया है, अब ब्रेमिक है, बेरोजगार बैठा है, कोई बंदा उसको उसके टाइम का कुछ कंपनसेशन देना चाहता है या उस प्लाज्मा या ब्लड के इवज उसकी थोड़ी सी मदद करें,
उसमें फिर आ जाता है कि वो गरीब गरीब तो ऐसे हैं कि जो अपनी गुर्दे बेच देते हैं कि जी हमारी बहनों की शादी है, तो इंसानी आजा को जो है ना वो उसकी वो तिजारत करना वो मेडिकली एथिकली भी गलत है और मजहब के लिहाज से भी हर मजहब में गलत है। तो ये प्लाज्मा अगर किसी ने डोनेट करना है तो वो डोनेट करे, उसको बेचे नहीं।
सही, आप ये बताइए पाकिस्तान में अगर ऐसी चीज हो रही है और प्राइवेट सेक्टर्स में बिलखसूस प्राइवेट जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर, तो कोई चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम है, कोई सुपरविजन है जो इसको कंट्रोल कर पाए?
देखिए, इस तरह की चीजें साबित करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह की कोरोना के एक कामयाब मरीज ने उसने जो फॉर्म फिल करना होता है वो तो कहता है कि मैंने डोनेट किया है, लेकिन अंडर हैंड एक डील होती है 5 लाख की 10 लाख की, जितना कोई अफोर्ड कर सकता है वो उसको पैसे दे देते हैं। पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको लुक आफ्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस तरह के ये बड़े बड़े स्कैम पाकिस्तान में आए हैं, इस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं
इस तरह के कितने आए हैं, जाहिद आपको पता होगा गुर्दों के,
बिल्कुल गुर्दों के, और फिर हार्ट के जो स्टंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं उनके बड़े स्कैम्स।
और इसमें एक स्कैम में ये भी है कि ये अनफॉर्चुनेटली नहीं कि खरीदो फरोख्त हो रही है, जबरदस्ती भी ले लिया जाता है, बेहोश करके ले गए हैं और जाके उठा के सड़कों पे फेंक दिया और पैसे भी नहीं दिया,
जबरदस्ती ले ली। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि एब्डोमेन गुर्दे की सर्जरी की है और गुर्दे की बजाय सॉरी पित्ते की बजाय गुर्दा निकाल के बेच दिया है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े
रिपोर्ट हुए मतलब,
और ये पूरी दुनिया में है ये। इस अजाब से, इस अजाब से हमें हमने बचना है, इस अजाब से
जी
बिल्कुल। ये एक इंसानियत पे बड़ा वक्त है। पाकिस्तान में तो ऐसे शर्मनाक कभी कभी केसेस आए हैं जो हमने खुद रिपोर्ट किए हैं। मरीजों का ऑपरेशन के दौरान रेप किया गया है। यहाँ पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस इस्लामाबाद की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक ऐसा केस रिसेंटली आया था। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज को मेरे ख्याल में अब जो ह्यूमैनिटी पे एक बड़ा टेस्टिंग टाइम है, पॉजिटिव स्टोरीज हम तवक्को करते हैं कि आनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का यही तकाजा है, लोगों को हेल्प करना चाहिए। यही एक वजह मैं आपको फेसबुक पेजेस का बता रहा था कि प्लाज्मा डोनेशन के बहुत सारे फेसबुक जो रजाकार हैं सामने आए हैं, वो दे रहे हैं धड़ाधड़ और फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकली दे रहे हैं, और उन पेशेंट के सारा डेटा और रिकॉर्ड भी वो पब्लिक कर रहे हैं ताकि लोगों को मालूम हो
प्लाज्मा को आगे फरोख्त करे।
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेडिकल साइंसेज में बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि ये चलता है, फिर तो इंसान अपना खून भी बेचेगा, अपने बच्चे भी बेचेगा, अपना कोई और फालतू ऑर्गन है वो भी बेचेगा।
एग्जैक्टली, सो अगेन इसमें जो भी मजहबी समाजी और इवन मेडिकल एथिक्स हैं उनका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। जाहिद गिशकोरी साहब, आपने इस्लामाबाद से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और बात हम करेंगे कोरोना और कोरोना के बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर फैलाव के पस मंज़र में। मुसलसल 3 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान में रोज़ाना 6,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तादाद, हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में इतवार की रात है, तो 1,39,000 हो चुकी है। पाकिस्तान के अपने ज़िम्मेदारान असद उमर साहब वो ये कह रहे हैं कि अगस्त तक ये तादाद 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज़्यादा हो सकती है। प्लानिंग कमीशन के सरबराह और इसके साथ साथ एक जो स्पेशल सेंटर बनाया गया है, कंट्रोल सेंटर एग्जैक्टली उसका नाम मैं भी आपको बताता हूँ, उसको भी वो हेड करते हैं और बता रहे हैं कि 12 लाख तादाद हो सकती है। आलमी इदारा सेहत बहुत पहले से ये खबरदार कर रहा था कि जनूबी एशिया में اگست سے لے کے نومبر تک کا جو وقت ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس وقت بھی پاکستان میں اگرچہ یہ تعداد 140,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے, لیکن ان آفیشیل سورسز سے جو ایکسپرٹس بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو صرف لاہور میں موجود ہوں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب موجود ہیں, کالمسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ملتان ایسا شہر ہے جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس انفیکشن کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے اگر تعداد کو دیکھا جائے. تو ملتان سے ہمیں رانا محبوب اختر صاحب نے جوائن کیا ہے, دانشور ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, اور اس موضوع کے اوپر ہمارے دونوں پینلسٹ لکھتے آ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم سے جائزہ لیں گے کہ سوسائٹی نے, معاشرے نے کس طرح اس مسئلے کو لیا ہے, انتظامی رویے کیا رہے ہیں, ہمارے انفرادی اور سماجی رویے کیا رہے ہیں. سو دونوں مہمانوں سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عاصم البخش صاحب, آپ کا بھی, رانا محبوب اختر صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں.
بہت شکریہ
جی. سو رانا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ نے لکھا ہے, کیا آپ کے مشاہدے میں آیا ہے ابھی تک کرونا, اب اس کو کم و بیش پاکستان کے اندر بھی 5 مہینے ہو چکے ہیں اس وائرس پہ بات ہوتے ہوئے, اس وائرس سے آگاہ کرتے ہوئے, تو سوسائٹی نے اس کے رویے کیا آپ کے مشاہدے میں آئے ہیں؟
دیکھیں جی, تھینک یو سو مچ. دی تھنگ از کہ سماج کا رویہ تھرو آؤٹ ہسٹری, جب بھی پینڈیمکس آئے ہیں یا کہیں پہ کسی معاشرے میں یا ملک میں یا علاقے میں اپیڈیمک آیا ہے یا پینڈیمک بنا ہے, وہ تو سماج کا رویہ آلموسٹ یہی رہا ہے جو آج ہے. یعنی لوگ اس کو سب سے پہلے اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں افواہ سازی کرتے ہیں, کیئر لیس ہوتے ہیں, اور سیلفش ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور حکومتی لیول پہ انکمپیٹنس نظر آتی ہے عام طور پر. یہ ہسٹوریکلی جتنے پلیگز آئے, میں مطلب وداؤٹ نیمنگ اینڈ وداؤٹ گیونگ اے ڈیٹیل ہسٹری آف دوز پینڈیمکس, عام رویہ انسانوں کا یہی رہا ہے, اور پاکستانی سماج اس سے مختلف نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے, لوگ ڈینائل میں چلے گئے, لوگوں نے افواہیں اڑائی, لوگوں نے جڑی بوٹیوں سے اس کو ٹریٹ کرنے کے بے شمار طریقے لوگوں نے بتائے, بہت سارے عطائی جو ہے وہ میدان میں اترے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو گائیڈ لائنز تھیں ان کو نہ صرف ہمارے سماج نے, بلکہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی اس پر عمل نہیں کیا.
صحیح.
اب اس وقت جو صورت حال ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ آج ایک امپیریل کالج کی ایک اسٹڈی آئی ہے پروبیبلی لنڈن سے, مائی فرینڈ آف مائن واز ٹیلنگ می, ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں 2 million to 2.2 million تک ڈیتھس ہو سکتی ہے, اموات ہو سکتی ہے. انفارچونیٹ پارٹ آف دا اسٹوری از,
یعنی 20 سے 22 لاکھ اموات, یہ ریسرچ,
20 سے 22 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں اگر آج لاک ڈاؤن بھی کر دیں اور ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں, تو اتنی زیادہ تباہی جو ہے وہ یہاں پہ آنے کا اندیشہ ہے. لیٹس ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز اور لوگ جو ہے وہ اپنے رویے بہتر کرتے ہیں, اور جو بھی ڈاکٹروں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو ایڈوائزری آ رہی ہے اس پہ عمل کریں اور خیال رکھیں اپنا.
ایگزیکٹلی ڈاکٹر عاصم اللہ بھائی صاحب, انتظامی رویے, ہمارے سماجی رویے کورونا سے متعلق کیسے رہے؟
دیکھیے, اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے, اس پہ کوئی اسٹڈیز نہیں ہوئی, اس کے کلینیکل کورس کا علم نہیں ہے, اور نہ ہی ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اس کی کوئی ویکسین ہے, اور نہ ہی تھراپی ایسی کوئی اویلیبل ہے جس کے ساتھ یہ طے کیا جا سکے کہ اس کو کیسے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بالکل ایک نیا نام بھی اس کا نوبل کرونا وائرس تھا, ایک نئی چیز ہے بالکل یہ. تو اس میں ہوا یہ کہ شروع سے لے کر اب تک जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो अभी उनका बनने का उनका रिफॉर्म होने का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ आज भी. यानी आप ये देखिए, तीन दिन पहले WHO ने कहा कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं वो इतना बड़ा खतरा नहीं है. विद इन 24 आवर्स उन्होंने रिट्रैक्ट किया इस बात को, उनका नहीं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी बहुत ज्यादा खतरा है. पहले वो कह रहे थे कि मास्क पहनना बहुत ज्यादा सूदमंद नहीं है इसमें, अब वो कह रहे हैं कि मास्क पहने. तो इस वजह से ये हर सतह पर ये चीजें चूंकि डिफाइन भी हो रही है, कन्वे भी हो रही है, तो इसमें एक कंफ्यूजन का एलिमेंट कहीं ना कहीं नजर आता है. पाकिस्तान के हवाले से ये है कि चूंकि जाहिर है कि तरक्की पजीर ममालिक के है वो सेहत के साथ साथ मईशत से हर चीज जुड़ी होती है, तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि जिस तरह राणा साहब ने कहा कि पहला तो वो डिनाइल का था, और ये डिनाइल बिलखसूस आवाम के लेवल पे था, और उसमें एक बड़ी टर्म मशहूर हुई कि आपके किसी जानने वाले को हुआ है कोरोना,
तो
ये बात करके इसको बिल्कुल डिफाई और डिनाई कर देते थे कि ये है. लेकिन अब ये स्टेज है कि अब ये सवाल कोई नहीं करता, और उसका नतीजा आप ये देखें कि निस्बतन ज्यादा लोग अब मास्क पहनते हैं.
बिल्कुल,
वो मास्क चाहे वो सर्जिकल या N95 या KN95 ना हो, कपड़े का भी हो, लेकिन लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं. और अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो उसको थोड़ी पर टिकाए रखते हैं मास्क को, लेकिन बहरहाल उनकी तादाद भी बहुत बढ़ गई है जो अब नाक और मुंह को ढांक के रखते हैं. इस हवाले से बेहतरी हुई है, लेकिन मसला ये कि बेहतरी के होने के साथ साथ जो इन्फेक्शन का हुजम है वो भी बहुत बढ़ गया.
बहुत ज्यादा,
क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका सेकंड इन्फेक्शन बहुत तेज और 2.4 इसकी है, और CFR जो केस फर्टिलिटी रेशियो यानी नॉन केसेस में डेथ का 2% के करीब इसका है.
अभी तक 2% है, अभी तक 2% है, लेकिन खतरा ये महसूस किया जा रहा है कि ये 2% से बढ़ सकती है. मैं इसमें क्योंकि शुरू दिन से जब से ये वायरस, जब से ये पेंडेमिक उसका सामना है पूरी दुनिया को, इस पर मुख्तलिफ माहिरीन से बात करते रहे, साइंसी मालूमात जानने वाले या साइंसी इदारों से जो रिसर्च आ रही है उसको फॉलो करने वाले ये कहते हैं कि साइंस की एक क्वालिटी ये है कि अगर उसने एक हाइपोथेसिस या एक रिसर्च सामने लेके आई है और अगर वो बदल गई है आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को देखते हुए, तो उसको उससे जैसे आपने कहा कि बदलने में अपनी सोच या नया एलामिया देने में उसको कोई कबाहत नहीं है. शुरू में कहा गया मास्क सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है, आम आदमी के लिए नहीं, फिर कहा गया नहीं अब सब के लिए लाजिम है, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा. इसी तरह शुरू में कहा गया कि सिर्फ ये शायद फेफड़ों को असर करता है, फ्लू टाइप का एक शदीद वायरस है और उसकी एक शक्ल है इन्फ्लुएंजा की, लेकिन अब कहा गया कि नहीं, ये तो इसकी तरह तरह की म्यूटेशन हो रही है. सो जो कुछ साइंसी इदारों से आ रहा है, जो बदल रहा है, उसको फॉलो करना होगा. अगर आज वो अपनी राय बदल रहे हैं तो उनकी आज की राय के साथ जाना होगा, कल वाली राय को भूलना पड़ेगा. अब मैं आता हूँ जो आपने भी बात की और राणा साहब ने भी बात की, साजिशी नज़रियों के ऊपर बिलीव करने की. आपकी नज़रें और आपके हाथ चूँकि समाज की नब्ज़ों पर हैं, तो मैं एक बात एक मिसाल के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ. हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़ी अच्छी उनकी फॉलोइंग है, हमारे साथ काम भी करते हैं. उन्होंने 20 पोस्टें कोरोना से मुतालिक लिखी होंगी, किसी ने संजीदा नहीं लिया. फिर उन्होंने वो सटायर के अंदाज़ में, तंज और मजाक के अंदाज़ में कुछ साजिशी नज़रिए उसके ऊपर दिए कि ये अमेज़ॉन के जंगलों में ये हुआ है और वहाँ पे ये आदमखोरों को डेड बॉडीज़ देने के लिए ये किया गया है. तो दसियों लोग मुझसे पूछते हैं कि ये देखा, ये है ना हकीकत, ये असल बात थी, कोरोना में रियलिटी नहीं है. मुझे ये बताएं कि ये जो साजिशी नज़रियों को बिलीव करने का, उसके ऊपर यकीन रखने का अंसर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है या दुनिया भर में है, या पाकिस्तान में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है? राणा साहब,
इंसान की फितरत है कि जब वो किसी चीज के सामने अपने आप को बेबस महसूस करता है तो ही बाइज ऑल काइंड ऑफ थ्योरीज इंक्लूडिंग दीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. तो उसमें होता क्या है कि जी चूंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सूरत हाल को आप समझ नहीं पा रहे, तो एक जो भी सिंपल सोल्यूशन आपके सामने आया कि वो फलां जो डेविल है, फलां जो इविल फोर्सेस हैं, वो ये कर रही हैं, तो इंसान फितरी तौर पर उसको बिलीव करता है. ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी ऐसा हुआ है. मैंने डेविड आइक को सुना है, वो बैठा हुआ एक तकरीर कर रहा होता है कि दुनिया में 150 लोगों का एक कल्ट है جو حکومت کرتا ہے اور وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے چپ لگانا چاہتے ہیں اور 5G کے وہ کھمبے لگانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا جو وائرس ہے یہ پھیلایا گیا. وہ صرف 20 کتابوں کا مصنف ہے. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تھیریز جو ہیں ان کو پاپولرائز کیا ہے اور لوگ ریڈیلی اس پہ بلیو کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز وہ بلیو بھی کرتے ہیں اور جو ان میں سے سینسیبل ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں, ماسک بھی چڑھائے پھرتے ہیں اور جب وہ پرائیویٹ گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں تو ان تھیوریز کو وہ وائس بھی کرتے ہیں, ان پہ بات بھی کرتے ہیں, ان پہ ان کو بلیو بھی کرتے ہیں. لیکن جب when it comes to them تو پھر وہ سیلفشلی بیہیو کرتے ہیں, پھر وہ اپنا جو ہے وہ دفاع بھی پوری طرح سے کرتے ہیں, اپنا ماسک بھی یوز کرتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کمپیریٹیولی جو معاشرے کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان میں یہ تھیوری زیادہ پاپولر ہوتی ہیں, لیکن ایجوکیٹڈ سماج اور ڈیولپڈ سماج میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینڈ بڑی تعداد میں موجود ہے. لوگوں نے امریکہ جیسے ملک میں جلوس بھی نکالے.
جی ہاں بالکل بالکل. اس وقت دو بڑی عام کانسپریسی تھیوریز ہیں پاکستان میں, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پھر آخری سوال. ایک تو یہ کہ ڈاکٹرز کو پیسے مل رہے ہیں, اس کے اوپر لوگ بالکل ان کو یقین ہے اور ڈاکٹروں کے اوپر ان کا اعتبار ختم ہو گیا ہے تو اس لیے وہ آپ کو مار رہے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی ابھی تک تو 1.5-2,000 یا 2,500 آپ مات ہوئی ہیں, کتنے ڈاکٹرز کو کتنے پیسے ملے ہیں, کتنے تقسیم کریں تو روپیز درجنوں سینکڑوں بیسیوں میں آتے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ شاید اب یہ ہمارے جسم کے اندر کوئی نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے تاکہ ہمارا کوئی ٹریک رکھنا ہے. سو رانا صاحب ان دونوں کانسپریسی تھیوریز کے بارے میں کچھ بتائیں لوگوں کو.
بالکل اہم کانا بات ہے. ڈاکٹر جو ہیں وہ تو اس طرح سے مطلب ہے وہ تو بے تھیک سپاہی ہیں جو اس اگر یہ جنگ ہے جو کہ میرے نزدیک تو یہ جنگ ہرگز نہیں ہے, جس سے ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے تو اس سے ڈرنا ہے. اس سے اور اس میں فائدے میں وہی رہیں گے. اس سے فائدے میں سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جو اس سے ڈریں گے اور جو بزدلی کا مظاہرہ کریں گے.
بالکل,
جو بہادر ہیں وہ مارے جائیں گے کیونکہ دشمن کا چہرہ ہی نہیں ہے, دشمن کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے. وہ اس طریقے سے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ بظاہر آپ کو نظر ہی نہیں آتا اور وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہی اس وقت چلتا ہے موسٹلی لوگوں کو جس وقت وہ تقریباً when they are half dead. تو یہ بالکل امکانہ بات ہے. اور ڈاکٹر جو ہیں آپ دیکھیں کتنے ڈاکٹر ہیں جو اٹلی میں, امریکہ میں, یو کے میں,
پاکستان میں
پیرامیڈکس ہیں لوگ, پاکستان میں اتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ دیر سک. میری اپنی بھتیجی جو ہے شی از اے ڈاکٹر, شی ہیز بین سک وتھ COVID-19 اور ابھی کوئی 15-16 دن کے بعد شی از آؤٹ آف ہاسپٹل. الحمد للہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے بیکاز شی واز ینگ اور اس کے امیونٹی ٹھیک تھی تو شی کیم آؤٹ آف اٹ. تو یہ بالکل غلط بات ہے, انتہائی اہمکانہ بات ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں پیسے لیتے ہیں اور اس پہ جو بلیو کرتا ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ مجربانہ بات اور نہیں ہو سکتی.
دوسری
بات جہاں تک چپ لگا,
جی جی چپ والی,
چپ لگانے والی ہے وہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں اور بےچارے وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو چپ لگا کر کسی نے کیا لینا ہے ان سے؟
جی ہاں بالکل.
یہ ایسی عجیب و غریب پن ہے کہ لوگ اس پہ بات ضرور کر رہے ہیں. مطلب اس پہ وہ جو یووال نو ہراری نے بھی اپنی اس پہ بات کی ہے کہ ایک ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ کے بننے کا امکان موجود ہے کیونکہ یہ ایک بگ ڈیٹا کی دنیا بننے جا رہی ہے اور اس میں لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دیر آر سرٹن کنٹرول میکانزم, کچھ انفارمیشن بھی ہے جو لیک ہوتی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب لوگ جو ہیں یا اس طرح کے لوگ ان کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا کہ ان کی
exactly. اور اس سے ایک اور جملہ اس میں یہ ہے, میں اکثر ایسی تھیوریز کے سامنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آلریڈی آپ کے پاس جو اسمارٹ فون ہیں آپ بند بھی رکھیں گے نا تو صبح سے لے کے شام تک آپ جہاں جگہ ہیں پورا میپ پورا نقشہ سامنے آ جائے گا. سو ایک بات. اور دوسری بات میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر چپ لگانی ہوئی نا تو آپ لائنوں میں لگ کے لگوائیں گے. اگر کسی دن یہ خبر آ گئی نا,
سویڈن میں ہو رہا ہے.
نہیں نہیں نہیں, ایک اور بات ہے رانا صاحب. جی ہاں, یعنی اگر ایک دن یہ بات آ جائے کہ جی ہم ایسی ایک چپ ہم نے تیار کر لی ہے جو آپ کی باڈی کے اندر کینسر یا بڑی بیماریوں کا 6 مہینے پہلے الارم دے دے گی, تو آپ تو لائن میں لگ کے لگوائیں گے, پیسے دے کے لگوائیں گے.
اچھا پھر دوسری بات, دیکھیں اگر کوئی میں غلط کام نہیں کر رہا تو میری چپ لگا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟
ایگزیکٹلی کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اسمارٹ فون کی صورت میں آلریڈی چپ ہے, اس میں آپ کی گفتگو بھی ہے, بھلے وہ فون
آپ کو ویکلی رپورٹ لینا چاہیں, منتھلی رپورٹ لینا چاہیں, آپ کے موبائل پہ آ جائے گی کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے اور کتنا آپ نے ٹریول کیا.
ایگزیکٹلی ڈاکٹر آصف علی بھگ صاحب, کانسپریسی تھیوریز کی یہ دو شکلیں.
دیکھیے میں اس پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا, جو ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا, اور خاص طور پہ آج کل ایک بڑی بات آ رہی ہے, کچھ ویڈیوز میں چل رہی ہے کہ وہ ٹیکہ لگا دیتے ہیں زہر کا اور ہمارا بندہ مار دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر کی باری ہمارے ہیلتھ سسٹم میں سب سے آخر میں آتی ہے. جب ساری جگہ گھوم پھر لیتے ہیں وہ, اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس خاص طور پہ اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے تو وہ اپنی فائنل سٹیجز پہ ہوتا ہے تقریباً, اور اس کو ظاہر ہے کہ پھر آپ جس وقت اس کو سٹیرائڈز دینے ہیں یا جو بھی آپ اس کے لیے ایمرجنسی میڈیسن دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. اب وہ سروائیو نہیں کرتا تو کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر نے مار دیا یا ڈاکٹرز یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک تو اس حوالے سے بھی جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں لواحقین بھی تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں, وہ آپس کا ان کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہماری فیملی سسٹم کا, وہ جنہوں نے مشورہ دیا ہوتا ہے کہ پہلے فلانے اس کو دکھا لو, فلانے حکیم کو دکھا لو, وہ صرف سرخرو ہونے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تو پیشنٹ ٹھیک لائے تھے, بالکل ڈاکٹر نے مار
دی.
اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ پھر باقی کہانیاں چلتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو چپ والی بات ہے, ایک تو وہ ابھی فیزیبل نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہر جو ایسی چیز الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے وہ ٹیشو ڈیمیج کا باعث بنتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل ابھی وہ طے ہو رہے ہیں کہ وہ کیسے ان کو ہوگا. مثلا کینسرز ہیں, یہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں جس کا بھی حل نہیں ہے, اس لیے وہ بھی ابھی دور کی بات ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لازمن کو چپ کر کے لگا دے گا. یہ جاسوسی ڈراموں میں یا ناولز میں تو پاسبل ہے ایک فیوچرسٹک پاسبلٹی کے حوالے سے, لیکن یہ ابھی ہیومنلی پاسبل بہت زیادہ نہیں ہے.
آخری سوال ریپ اپ کیجیے گا آصف علی بھگ صاحب, اب ہم نے دونوں رویوں پہ بات کی ہے, سماجی بھی اور انتظامی بھی, سو اس یہ جو پورا ڈسکورس آ رہا ہے اور جو خطرہ سامنے کھڑا ہے, ابھی اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ 12 لاکھ تعداد ہو سکتی ہے اگلے مہینے جولائی میں, حالانکہ اگست پیک ہے, تو گورنمنٹ اپنا رویہ کیسے بدلے, لوگ انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ وہ کیسے اپنا رویہ بدلیں؟
دیکھیے گورنمنٹ نے ایک اشارہ دیا, انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ لوگ جو ہے 15 مئی کو لاہور میں ہوئے ہیں. اگر آپ 2% کا سی ایف آر دیکھیں تو 14,000 مورٹیلٹی ہونی چاہیے تھی صرف لاہور میں, جو نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اصل انفیکٹیویٹی ہے, جو مورٹیلٹی ہے, اس کا 0.1 سے 0.2% ہے. آئی ریپیٹ, 0.1 سے 0.2% ہے. یہ صرف جو ٹیسٹڈ کیسز ہوتے ہیں اس میں 2% کی ایک مورٹیلٹی شو ہوتی ہے. اس لیے گورنمنٹ اس حساب سے اس کو بیلنس کرنا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو بند کرنا ہے یا چلانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اگر بچنا بھی ہے تو گوئنگ تھرو کووڈ از اے ہارڈ ایکسپیرینس, یہ بہت برا ایکسپیرینس ہے. جو بھی ریکور بھی کیے ہیں 100% جتنے لوگ ماشاء اللہ, وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس سے گزرنا ایک بڑا جو ہے وہ خطرناک یا ایک بڑا تکلیف دہ ایکسپیرینس ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عوام اس بات کو سمجھے کہ وہ جتنی اس کی ریسپانسبلٹی خود بھی لیں گے اپنی حفاظت, ہینڈ واشنگ کے حوالے سے 3 چیزیں اس میں بیسک ہے. کراؤڈ کو اوائڈ کرنا ہے, ہاتھ زیادہ زیادہ واش رکھنے تاکہ چہرے پہ لگیں تو وہ کیریئر نہ بنے جراثیم کے وہاں تک پہنچانے کے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ماسک لگائیں تاکہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک لگائیں, اب پھر آپ سیو ہو جائیں, کم از کم اپنے آپ کو بچائیں.
اگر آپ اپنے کلچرلی دیکھیں نا عاصم صاحب, پاکستان میں خاص طور پہ اگر ہم دیہی علاقوں میں, میں دیہی علاقوں میں پہلا بڑھا ہوں, گرمیوں میں ہم ویسے بھی سر بھی ڈھانپ کے رکھتے ہیں, بڑا سا ایک کپڑا ہوتا ہے, سو اسی سے ناک منہ بھی ڈھانپا جا سکتا ہے, دوسروں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. جی ہاں جی, رانا محبوب اختر صاحب, سوسائٹی اور حکومت دونوں اپنا رویہ کیسے بدلیں؟
رویے سوسائٹی سے تو زیادہ بدلنے کی توقع نہیں ہے, جو عاصم صاحب کہہ رہے تھے یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ وہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کریں, سماجی فاصلہ قائم رکھیں, ماسک استعمال کریں, ہاتھ دھوتے رہیں, اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ اوائڈ کریں, بلکہ میکسیمم اوائڈ کریں. اور اس کے علاوہ حکومت کو کے کرنے کا جو کام ہے, میرا خیال ہے دے شوڈ گو ان فار اے لاک ڈاؤن, وہ ڈتھرنگ چھوڑ دیں, وہ وقت گزر گیا ہے, اب ڈتھرنگ کا وقت نہیں ہے. حکومت کلیئر فیصلہ کرے, اگر کسی نے بتایا ہے وزیر اعظم کو کہ اس سے لوگ بھوک سے مر جائیں گے, یہ بالکل غلط اطلاع ہے. پاکستانی سماج ایسا ہے
ये इस एक महीने के लिए या दो महीने के लिए आप लॉकडाउन मुकम्मल करें तो लोगों को कुछ नहीं होगा, यहाँ हमारे हमसाये रिश्तेदार हमारे दोस्त हमारी मस्जिदें हमारे और समाजी दायरे इतने सारे मौजूद हैं कि एक दो महीने में लोग आजकल प्याज आम है देहातों में लोग प्याज के साथ रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा कि लोग जो है एक दो महीने में भूख से मर जाएंगे, लोग कोरोना से मरेंगे, कोरोना को रोकें, लोग भूख से नहीं मरते पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोरोना की सूरत हाल खतरनाक है, उस पर हुकूमत को डिटरिंग खत्म करके डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए और इनको टोटल डाउन करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया राणा महबूब अख्तर साहब, आपने भी ज्वाइन किया, डॉक्टर आसिम अलाबाग साहब आपके भी हम ममनून हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अमेरिका की मईशत कोविड 19 के बाद क्या बहाली की जानेब है। व्हाइट हाउस का दावा यह है कि इस मोहलिक आलमी सतह की इस वबा के बाद बुरी तरह नुकसान हुआ मईशत को, लेकिन व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन वो ये कह रही हैं कि उनके जो एडवाइज़र हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र लैरी खडलो, उन्होंने इतवार के रोज़ एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि अब हम वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं और उनके बकौल 2021 बहुत एक सॉलिड साल होगा उनके अल्फाज में, यानी वो फाइनेंशली ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उन्होंने इस जानेब भी इशारा किया कि $600 जो है वो एक वीकली अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन वो दी गई है लोगों को, और 40 मिलियन जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे उनको हेल्प आउट किया गया है, और अब उनका ये कहना है कि जॉब्स जो हैं वो भी बहाल हो रही हैं और मईशत वापसी की जानिब गामजन है। डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी से उनकी वाबस्तगी बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्या आपका मुशाहिदा है इस बारे में, क्या वाकईतन इज़ इट अर्ली टू क्लेम के मईशत बहाली की जानिब है और अगले साल तक ये सारा नुकसान या सारा जाला हो सकता है, या कुछ ग्राउंड्स के ऊपर आपने तब्दीलियां ऐसी देखी हैं?
देखिए इसको लेने के जो है दो एंगल होंगे, एक तो एंगल ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वर्ल्ड वाइड वो अपने लोगों के मोरल को हमेशा बुलंद रखने के लिए वो ये कहते रहते हैं कि डेफिनेटली अच्छे दिन आ रहे हैं और अच्छे दिन की हमें तवक्को करनी चाहिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि खुद एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की जो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है हमेशा से वो यही होती है कि किसी किस्म की एडवर्सिटी में भी वो अपॉर्चुनिटी उसको तलाश करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन इकोनॉमी के रेफरेंस से जब अमेरिकन इकोनॉमिस्ट बात करते हैं तो उसके अंदर हमें एक दो लेवल पे इसको हमें देखना पड़ता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो लेवल के ऊपर। अमेरिकन इकोनॉमी की जो एक्चुअली बैकबोन है इसमें कोई शक नहीं कि वो स्मॉल बिजनेस है, और स्मॉल बिजनेस ने ही सबसे ज्यादा सफर किया है इस टर्मोइल के अंदर। लेकिन स्मॉल बिजनेस के अंदर वो बिजनेस भी आते हैं अमेरिका के जो कि सफर हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर्विस इकोनॉमीज होती हैं। वो सर्विस इकोनॉमीज में ऑफकोर्स रेस्टोरेंट्स आते हैं, उसमें एयरलाइन इंडस्ट्री आती है, ट्रेवल इंडस्ट्री आती है, तो ये जो ये इंडस्ट्री इसमें नो डाउट कसर की है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनकी इकोनॉमी को इतना हिट इसलिए नहीं लगा कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है प्रोसेस टेक्नोलॉजी, और प्रोसेस टेक्नोलॉजी वो चीज़ होती है कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर। तो वो जो इनकी इंडस्ट्री और वो जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो चाहे वार टाइम हो या चाहे पैंडेमिक टाइम हो, उसके अंदर चूंकि लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज है फूड की वो उनकी पूरी होती रहती है। तो आपने नोट किया होगा कि इतने स्ट्रांग अपना पैंडेमिक के बावजूद भी जहाँ पर के अमेरिकन पब्लिक ने भी इसको सफर किया है, उनकी मोर देन $120,000 के करीब उनकी अमवात हो चुकी है, इसके बाद में भी आपको किया होगा कि इनकी सुपर मार्केट के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा चीज देखने को नहीं मिली कि जहाँ पर के चीजें अवेलेबल ना हो लोगों को, या उनकी प्राइसिंग बढ़ गई हो,
सही
ना उनकी प्राइस बढ़ी और चीजें अवेलेबल थी। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर है अमेरिकन इकोनॉमी का, मैं समझता हूँ, जो कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा जो इनका सेक्टर था वो था इनका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर भी जो हेल्थ केयर की मैन्युफैक्चरिंग है वो एज इट इज चलती रही है, बल्कि इसके अंदर जो लिक्विड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग थी उनके बल्कि ऑर्डर डबल हो गए, ऐसे कि उनको सैनिटाइजर वगैरह बनाने पड़ गए। अच्छा, जब अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें एक बात करती है तो वो जो उनकी बात है कि हमारा 2021 जो है वो 2019 से या 2020 से बेटर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया के तकरीबन हर कंट्री की इकोनॉमी जो है 2020 में माइनस में जाएगी, दैट इज अ नो डाउट। और इसमें अमेरिकन इकोनॉमी तकरीबन कोई 4.5 तक माइनस की ग्रोथ होगी। अच्छा, लेकिन जब हम इनकी 2021 की जब ये बात करते हैं कि वो अच्छा होगा, तो उसके पीछे जो एक ऐसा अवामिल है जिसमें कि अमेरिकन गवर्नमेंट को भी इसका अंदाजा है, और वो ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का जो डेट सर्विसिंग है $25 trillion की, वो डेट सर्विसिंग जो है वो नहीं होगी। तो उस डेट सर्विसिंग ना होने से जो इनको जो अवेलेबल फंड्स होंगे, वो फंड्स आगे उस स्मॉल बिजनेस की सपोर्ट में जाएंगे कि जो कि सर्विस इंडस्ट्री खासतौर पर जिसमें एयरलाइन और फूड इंडस्ट्री, फूड में भी सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है,
उसने काफी उसके अंदर जमीन के ऊपर ऐसे अवामिल मौजूद हैं। अब क्विकली एक मिनट में इसको रैप अप कीजिएगा, तो क्या ये चीज, ये मॉडल यूरोप और बाकी दुनिया भी इख्तियार कर सकती है जो इस पेंडेमिक से बुरी तरह से मुआशी तौर पर मुतासर हुई है?
बिल्कुल, ये मॉडल अब दुनिया के हर कंट्री की डेवलपमेंट डिफरेंट होगी। इसमें जो एक मेन चीज होगी वो ये है कि दुनिया के हर मुल्क को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो यूरोप में भी ये है कि उनकी डेट सर्विसिंग नहीं होगी तो उनके पास एडिशनल फंड्स अवेलेबल होंगे। और जहां तक ताल्लुक है जिसका कि स्मॉल बिजनेसेस का, तो स्मॉल बिजनेसेस का जब हम ओवरऑल जब हम इसको देखते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को, खासकर रेस्टोरेंट सर्विस इंडस्ट्री को, तो अमेरिका का और यूरोप का तकरीबन ये 14-18% के दरमियान में ये टोटल इकोनॉमिक उस पर लॉस आता है। तो मतलब है कि 80% प्लस इकोनॉमी फिर वो स्टेबल ग्राउंड पे वो चलती रहेगी आगे चल के। हाँ, जब हम जाते हैं अफ्रीका और एशिया में, अफ्रीका एशिया में फिर डेवलपमेंट जो है वो कंट्री टू कंट्री होगी। उसको अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस से देखें तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है,
सही।
और वो इस तरह की पाकिस्तान के पास क्योंकि डेट सर्विसिंग ना होने से बिलियंस ऑफ डॉलर सेव होंगे, तो उस पैसे को अगर वो डेवलपमेंटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर लगा देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी बहुत ग्रो करेगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अमेरिका में एक बार फिर मुजाहरों के ऊपर, और ये मुजाहरे भी एक बार फिर पुलिस की ट्रीटमेंट के साथ वाबस्ता हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि पिछले दो हफ्ते जॉर्ज फ्लॉयड मिनियापोलिस में पुलिस ऑफिसर के हाथों गिरफ्तारी के अमल के दौरान उनकी हलाकत के ऊपर पूरे अमेरिका में मुजाहरे हुए, पुलिस रिफॉर्म्स का मुतालबा किया गया और इसी तरह एथनिक इक्वालिटी के ऊपर बात की गई। अब एटलांटा के अंदर एक और वाकया हुआ है जिसमें एक सफ़ेद फाम पुलिस ऑफिसर उसकी गोली से एक और स्याह फाम उसकी हलाकत हुई है, लेकिन इसको कई हवालों से देखा जा रहा है और देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि पुलिस की इटसेल्फ ट्रेनिंग क्या होती है और पुलिस को अपने तहफ़ुज़ के लिए क्या करना होता है और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो क्या कर सकते हैं। इस वाक़े के बाद भी पुलिस चीफ ने पहले तो जो ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे भेजा, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये कि पुलिस की जो चीफ है एटलांटा पुलिस चीफ एरिका शील्ड्स, वो खुद भी मुस्ताफ़ी हो गई हैं। सो क्या हो रहा है अमरीका के अंदर,
और ये जो अभी जॉर्ज फ्लॉयड वाले मुजाहरे थे वो किस करवट बैठे हैं कि अब ये अटलांटा का जो वाकया आ गया है उसको कितना फ्यूल करेगा। बात करते हैं तलत रशीद साहब से, रिपब्लिकन पार्टी से उनकी वाबस्तगी और विल काउंटी शिकागो में पुलिस कमिश्नर भी हैं, सो इंडिपेंडेंटली हम उनकी ओपिनियन लेते हैं। तलत रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। तलत साहब ये क्या हो रहा है, पुलिस की प्रैक्टिस क्या हैं, कितनी फेयर प्रैक्टिस है, इसको हर बार एक एथनिक एंगल से ना देखना क्यों ज़रूरी है?
ये देखिए ना, पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ये पुलिस की ट्रेनिंग डे वन से वही है, सेल्फ प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक। ये पुलिस का हक है, ये पुलिस का काम है, इसी के लिए पुलिस को हायर किया जाता है। अब ये इंसिडेंट जो है ये सालों साल हो रहे हैं, ये नहीं कि ये पहली दफा हुआ है, ये होता है। पुलिस डिफेंस, पुलिस जब किसी क्रिमिनल को या किसी मुलजिम को पकड़ती है तो मुलजिम को बार बार कहती है कि ये अपने यू नो हाथ नीचे करो, अगर आपके पास कोई हथियार है तो उनको हमें दे दो या फेंक दो या फिर के साइड पे जो है लग जाओ और उनके उनको उकसाओ नहीं पुलिस वालों को। तो होता है कि जब भी कोई रिजिस्ट करता है तो सेल्फ प्रोटेक्शन में पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ती है वो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस को ये पता नहीं कि जो जिस आदमी को पकड़ रहे हैं उसके पास क्या है।
जी बिल्कुल, उनकी ये तरबियत का हिस्सा है। इवन हमने जब ड्राइविंग लाइसेंस लिया, मैं सिर्फ अपने लिसनर्स की अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, सो उस ड्राइविंग लाइसेंस में हमारे जो लिटरेचर दिया जाता है हमें बताया जाता है कि पुलिस रोके तो आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे इस पोजीशन में हों कि पुलिस ऑफिसर उसको देख सके। हत्ता कि जब आप पुलिस ऑफिसर आपसे लाइसेंस मांगे और आप आराम से अपने हाथ को मूव करके परमिशन लेके कि मेरे वॉलेट में है यहाँ से निकाल लूँ और स्लो मूवमेंट के साथ जाएं, वरना पुलिस ऑफिसर कुछ भी प्रीएम्प्ट कर सकता है और जो हालात है उसके मुताबिक वो कोई भी एक्शन ले सकता है। लेकिन तलत रशीद साहब, मैं कल एक और डिबेट सुन रहा था, उसमें ये सवाल उठाया गया कि हम पुलिस से सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे साथ उसी तरह का रवैया रखें जो आप सफ़ेद फार्म के साथ रखते हैं, किसी सफ़ेद फार्म को आपने रोका है या उसकी गाड़ी को रोका है तो जो उसके साथ ट्रीट करते हैं उसी तरह हमें करें, क्या इसमें कोई फ़र्क है इस हैंडलिंग और डीलिंग में? और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी तरफ के वाक़यात क्यों नहीं पेश आए कि कभी किसी सफ़ेद फार्म को इस तरह ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत वाकई हो गई हो?
भाई ये देखे ना, मीडिया जो है वो सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन्स को कवर करता है, जो वाइट अमेरिकन्स को नहीं करता। कितने वाइट अमेरिकन्स मारे जा चुके हैं, कितने स्पेनिश मारे जा चुके हैं इसी उसमें कि वो उन्होंने पुलिस को या पुलिस के अहकाम को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मीडिया जो है ना इसको बता नहीं रहा। खाली जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जब कोई वो उसको कोई वाकया होता है तो वो मीडिया की अटेंशन ले लेता है। पिछले साल भी कुछ 17 जो है वाइट अमेरिकन वो पुलिस के हाथों मारे गए हैं और वो इसी वजह से ये उन्होंने रेजिस्ट किया था पुलिस को क्या कहते हैं पुलिस के अहकाम को सुनने में। तो यही मेजर वजह है, और पुलिस को ये नहीं पता होता कि किसके पास क्या है और कौन क्या कर सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि कितने पुलिस ऑफिसर्स अगर आप देखें तो हफ्ते में 2 या 3 या 4 पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। वो इसी वजह से मारे जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फौरन वही वो घास कहीं से गन निकाल के वो उनको शूट कर देते हैं या उनको पॉइंट करते हैं। पुलिस के ऊपर गन पॉइंट करना भी जुर्म है, उससे भी पुलिस आपको, क्योंकि आप उसको उकसा रहे हैं, आप उसके बाजू का जी होता है कि आपके पास बीबी गन होती है प्लास्टिक गन, लेकिन पुलिस दूर से नहीं देख सकती कि आस पास क्या है, इसलिए उसको ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं।
अब दरअसल आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अब पहले मुजाहरे हुए, अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद एक बार फिर वो मामला दोबारा सामने आ जाए और ज़्यादा शिद्दत से आ जाए, सो पहले मुजाहरे किस करवट बैठे जब इतने मुतालबात होते रहे, पुलिस की सतह पर कोई रिफॉर्म्स की कोई कमिटमेंट की गई है, क्या हुआ पिछले मुजाहरों का नतीजा?
अभी देखिए ना, ये तो टाइम लगेगा, अब एक दिन में हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते आप। ये जो भी मुजाहरे हुए हैं, ये जाहिर है अब ये सारे डिबेट होगी, कांग्रेस में जाएंगे सेनेट में जाएंगे तो ये रिफॉर्म होगी, उसके लिए काफी टाइम लगेगा। अब क्योंकि अब जो है अब ये कोई वाइट ग्रुप जो है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग भी कोई स्टैंड लेना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब ये चलती है ब्लैक लाइव मैटर्स तो वो भी ये होगा कि ऑल लाइव मैटर। कल जो है स्पेनिश अमेरिकन शुरू हो जाएंगे जी कि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे हकूक कहाँ पे है।
ठीक है, इसी रेफरेंस में एक और तलब साहब, ये हमने इवन उन मुजाहरों में भी देखा, सो कुछ रिएक्शन पुलिस की जानिब से भी आया है, कई लोगों ने रिजाइन भी किया इज्तमाही तौर पर, सो इस तरह के जो वाकयात हैं क्या ये पुलिस के एज इंस्टीट्यूशन पुलिस ऑफिसर्स का एक रिएक्शन भी हो सकता है?
जी हाँ, ये डेफिनेटली, बल्कि आपको शायद पता नहीं कि एलए में एक पुलिस ऑफिसर ने बहुत बड़ी क्या कहते हैं, 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं, वो कह लेंगे इस हालात में मैं पुलिस में काम नहीं कर सकता जिसमें हमारी प्रोटेक्शन नहीं है और हमें जो हमारा हक है आपको प्रोटेक्ट करने का वो मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये शुरू हो गया तो यहाँ लॉलेसनेस शुरू हो जाएगी, पुलिस ऑफिसर्स कम पुलिस में आएंगे, इससे पहले ही इतनी शॉर्टेज है, इतने हालात खराब हैं कुछ इलाकों में जहाँ पे इस किस्म के हालात होते हैं, तो वहाँ पुलिस वाले जो हैं वो डेफिनेटली वो कहेंगे जी ठीक है जी हम पुलिस में नहीं आना चाहते, हम क्यों अपनी लाइफ रिस्क करें हम। तो उसका नुकसान किसका होगा? उसका नुकसान आपको होगा, उसका नुकसान हमें होगा, बहुत मसला होगा। ये
बहुत शुक्रिया दलित रशीद साहब, आपने ज्वाइन किया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।
और
सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने खुदाम को पहुंचता है। असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी